ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ವಾಸುದೇವಾಯ, ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ವಾಸುದೇವಾಯ, ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ವಾಸುದೇವಾಯ. ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವಿಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯಾಮುದೀರಯೇತ್. ನಶ್ಚ ಪ್ರಾಯೇಷ ಭದ್ರೇಷು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯಾ ಭಗವತಿ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೇ ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ನೈಶ್ಚಿಕೀ. ಓಂ ಜ್ಞಾನವಿರಾಂದಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರೋನ್ಮಿಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಚೈತನ್ಯಮನೋಭೀಷ್ಟಂ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಯೇನ ಭೂತಲೇ ಸ್ವಯಂ ರೂಪ ಕದಾ ಮೇಹಂ ದದಾತಿ ಸ್ವಪದಾಂತಿಕಂ. ವಂದೇಹಂ ಶ್ರೀಗುರೋ ಶ್ರೀಯುತಪದಕಮಲಂ ಶ್ರೀಗುರುನ್ವೈಷ್ಣವಾಂಶ್ಚ ಶ್ರೀರೂಪಂ ಸಾಗರಜಾತಂ ಸಹಗಣರಘುನಾಥಾನ್ವಿತಂ ತಂ ಸಜೀವಂ ಸಾದ್ವೈತಂ ಸಾವಧೂತಂ ಪರಿಜನಸಹಿತಂ ಕೃಷ್ಣಚೈತನ್ಯದೇವಂ ಶ್ರೀರಾಧಾಕೃಷ್ಣಪಾದಾನ್ ಸಹಗಣಲಲಿತಾ ಶ್ರೀವಿಶಾಖಾನ್ವಿತಾಂಶ್ಚ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸದಿ ಗೌರಭಕ್ತವೃಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ. ಕಲ್ ಹಮನೆ ಶ್ರವಣ ಕಿಯಾ ದ್ವಿಜ ಪತ್ನಿಯೋ ಕಾ ಉದ್ಧಾರ, ಉಸ್ಕೆ ಉಪಲಕ್ಷ ಮೇ ಉಸ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಮೇ ಬಹುತ್ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಸಿದ್ಧಾಂತೋ ಕೋ ಚರ್ಚಾ ಕಿಯಾ ಕಿ ಕಿಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದ್ವಿಜ ಪತ್ನಿಯೋ ಕೆ ಪ್ರತಿ ಮಾಧುರ್ಯ ರಸ ಕೋ ಆಸ್ವಾದನ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೇ ವೋ ಯೇ ಬಹುತ್ ಸುಂದರ ಲೀಲಾ ಕೋ ರಚಾಯಾ. ಕೃಷ್ಣ ನೇ ಪಹಲೆ ಅಪ್ನೆ ಗ್ವಾಲ್ ಬಾಲೋ ಕೋ ಕಹಾ ಜಾಓ, ಜಾಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಸೆ ಮಾಂಗೋ ಕಿ ಉನ್ಕೋ ಯೇ ಕಹನಾ ಕಿ ಬಲರಾಮ ಆಯೇ ಹೈ ಔರ್ ಉನ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಮೇ ಕೃಷ್ಣ ಹೈ, ಕ್ಯೋಂಕಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೋ ಮಾಲೂಮ್ ಹೈ ಕಿ ಯೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹೈ, ಹೋ ಸಕ್ತಾ ಹೈ ಕಿ ಮೇರಾ ನಾಮ ಸುನ್ಕೆ ನಹೀ ದೇ, ಕ್ಯೋಂಕಿ ಮೈ ತೋ ವೈಶ್ಯ ಪರಿವಾರ ಕಾ ಹೂಂ, ಬಲರಾಮ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ರೂಪ ಮೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೈ, ತೋ ಉನ್ಕೋ ತೋ ದೇ ಸಕ್ತೆ ಹೈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ವೈಶ್ಯ ಕೋ ತೋ ದೇತೆ ಭೀ ನಹೀ ಹೈ, ಯಾ ಉನ್ಕೋ ಥೋಡಾ ಸಾ ನೀಚ ಪರಿ ನೀಚ ಜಾತಿ ಕೆ ಇಸ್ಲಿಯೇ ನಹೀ ದೇಂಗೆ, ಐಸಾ ಸೋಚ್ ಕೆ ಉನ್ನೆ ಐಸಾ ಕಹಾ. ಗ್ವಾಲ್ ಬಾಲ್ ಜಾಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಕೋ ಕಹಾ ಕೃಷ್ಣ ನೇ ಹಮಕೋ ಭೇಜಾ, ತೋ ಆಪ್ ಹಮಕೋ ದೀಜಿಯೇ, ತೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ನೇ ನಾ ಹಾ ಕಹಾ ನಾ ನಾ ಕಹಾ, ಯಾನಿ ದೂಸರೆ ತರಿಕೆ ಸೆ ವೋ ತೋ ಧ್ಯಾನ ಹೀ ನಹೀ ದಿಯಾ ಇನ್ ಲೋಗೋ ಕೆ ಪ್ರತಿ, ತೋ ಬಹುತ್ ಗುಸ್ಸಾ ಆಯಾ ಗ್ವಾಲ್ ಬಾಲೋ ಕೋ, ತೋ ಉನ್ಹೊನೆ ಕಹಾ ಕಿ ಆಪ್ ಧರ್ಮ ವಿತ್ತಮ, ವೈಸೆ ತೋ ಹಮನೆ ಕಹಾ ಲೇಕಿನ್ ಯೇ ಗಲತ್ ಹೈ, ಆಪ್ ಧರ್ಮ ವಿ ಮತಲಬ್ ವಿಧರ್ಮ ಕೆ ಪಾಲಕ್ ಹೋ, ಆಪ್ ಧರ್ಮ ನಹೀ ಜಾನತೆ ಹೋ, ಔರ್ ತಮಗುಣ ಸೆ ಆವೃತ್ ಹೋ, ಆಪ್ ತೋ ಜಿಸ್ ಕಾರ್ಯ ಜಿಸ್ ಯಜ್ಞ ಕೋ ಕರ್ ರೇ ಹೋ, ಯಜ್ಞ ಕಾ ವಾಸ್ತವಿಕ ಭೋಕ್ತಾ ಕೃಷ್ಣ ಹೈ, ಯೇ ಬಾತ್ ನಹೀ ಜಾನ್ ಯೇ ಬಾತ್ ಕೋ ನಹೀ ಜಾನತೆ ಹೋ, ಔರ್ ಸಾರೆ ವೇದೋ ಕಾ ಉದ್ದೇಶ ಕೃಷ್ಣ ಕೋ ಪ್ರಸನ್ನ ಕರ್ನಾ ಹೈ, ಯೇ ಬಾತ್ ಆಪ್ ಸ್ವೀಕಾರ ನಹೀ ಕಿಯಾ, ತೋ ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಬಹುತ್ ಹತಾಶ ಹೋಕೆ ಗ್ವಾಲ್ ಬಾಲ್ ವಾಪಸ್ ಆಯೇ. ತಬ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಾ ಆಪ್ ಚಿಂತಾ ಮತ್ ಕರೋ, ಏಕ ಯಾಚಕ ಹೋತಾ ಹೈ, ಏಕ ಭಿಖಾರಿ ಹೋತಾ ಹೈ, ಉನ್ಕಾ ಕೋಯಿ ಚಾಯ್ಸ್ ನಹೀ ರಹತಾ ಹೈ, ಉನ್ಕಾ ಕೋಯಿ ವಿಶೇಷ ಮಾಂಗ ನಹೀ ರಹತಾ ಹೈ, ಮಿಲ್ತಾ ಹೈ ಕಭಿ ನಹೀ ಮಿಲ್ತಾ ಹೈ, ತೋ ಆಪ್ ಜಾಓ ದ್ವಿಜ ಪತ್ನಿಯೋ ಕೆ ಪಾಸ್. ತೋ ಸಬ್ ಗ್ವಾಲ್ ಬಾಲ್ ದ್ವಿಜ ಪತ್ನಿಯೋ ಕೋ ಜಾಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಕಹಾ ತಾ, ಜಾಕೆ ಖಾಲಿ ಮೇರಾ ಯೇ ಕಹನಾ ಕಿ ಕೃಷ್ಣ ಆಯಾ ಹೈ, ಯೇ ಮತ್ ಬೋಲ್ನಾ ಕಿ ಮೇ ಭೂಕಾ ಹೂಂ, ಕ್ಯೋಂಕಿ ಮೇ ಯೇ ಬಾತ್ ಸುನ್ತೇ ಹೋ ಬೇಹೋಶ್ ಹೋ ಜಾಯೆಂಗೆ. ಕಲ್ ಹಮನೆ ಚರ್ಚಾ ಯೇ ಕಿಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ವಾಲ್ ಬಾಲ್ उधर जाके कृष्ण जैसे कहे उन्होंने ऐसे ही कहा। तो कृष्ण आए हैं, अभी नज़दीक में ही है। जैसे ही बात सुनते ही द्विजपत्नी नाम श्रवण करते वो एकदम वो बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। तो ग्वाल बालों को ऐसा होगा कि अरे कैसे अभी क्या करें। तब उन्होंने कहा कि नज़दीक में है और कृष्ण भूखे हैं। और ये बात सुन के द्विजपत्नी वापस होश में आए और तुरंत जो भी चीज़ था सब सामान लेके आए, चार प्रकार के व्यंजन भगवान को भोग लगाने के लाए। तब कृष्ण की सुंदरता का वर्णन हमने चर्चा किया, किस प्रकार उन लोगों ने कृष्ण का इस प्रकार रूप को देखा। और देखते देखते कृष्ण अपने एक हाथ को एक अपने ग्वाल बाल के कंधे के ऊपर रखे थे, दूसरे हाथ से उन्होंने एक कमल का पुष्प को हिलाते हुए सारे जुजपतियों को एक कह रहे थे कि मेरा हृदय आपको देख के इसी प्रकार घूम रहा है, इसी प्रकार फिर रहा है। ये बात चर्चा करके जैसे कृष्ण द्विजपत्नियों को ऑलमोस्ट अभी आलिंगन करने ही वाले थे या अपनाने ही वाले थे, शारीरिक संपर्क होने ही वाला था, तब हमने चर्चा किया किस प्रकार लीला शक्ति ने रोक दिया कृष्ण को। तो बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत चर्चा किया, भगवान का इच्छा या संकल्प शक्ति से भगवान की जो लीला शक्ति है वो शक्तिशाली है। क्योंकि भगवान का लीलाओं के अंतर्गत भगवान का शारीरिक संपर्क माधुरी में अगर किसी को प्राप्त करना है वो गोपी का गर्भ से ही जन्म लेना होगा, गोपी के पदचिन्हों में चलना होगा। क्योंकि इन लोगों का ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ है, भगवान उनको स्पर्श नहीं करेंगे। क्योंकि गोपी जन्म जो है ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने से बढ़कर है, तो इसलिए भगवान ने इन द्विजपत्नियों को कहा कि आप वापस जाओ, आप अपनी पत्नियों पति को सच्चे संतुष्ट करो और ये मत सोचो कि मैं आपसे दूर रहूँगा, हमेशा मेरा स्मरण करते रहो, मेरा कीर्तन करो, मेरा कथा का श्रवण करो। ये श्रवण करने के द्वारा मैं आपके हृदय में रहूँगा और ये हृदय में रहने वाला मुझको आप हृदय में ही आलिंगन करो, ऐसा भगवान ने कहा। तो कल ये भी चर्चा किया किस प्रकार ये सुनते ही द्विजपत्नियों ने कहा ठीक है, हम जानते हैं कि हम तो तुच्छ परिवार तुच्छ ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए, हमको गोपियों के जैसा सौभाग्य नहीं है। कम से कम जब आप इन गोपियों को आलिंगन करते हो तो आपके जो वन माला है तुलसी की माला है वो माला से उत्पन्न कुछ तुलसी के पत्ते तो काश हमको प्राप्त हो जाए, हम तो घर वापस नहीं जाना चाहते हैं। आपने शास्त्रों में कहा है इस बात को कि यद्गत्वा अनिवर्तन्ते, एक बार मुझको प्राप्त कर लेता है वापस नहीं आता है, हम तो आपके पास आए वापस क्यों भेज रहे हो। यो यथामाम प्रपद्यन्ते तामस्ते भजाम्यहम, जिस प्रकार हम शरणागत होते हैं उसी प्रकार आप भी हमको रेसिप्रोकेट करते हो, हमारे साथ ऐसा क्यों अन्याय कर रहे हो। अगर आपको संकोच होता है कि आपके घर लेके जाने में हमको या आपके गांव में रखने के लिए ऐसा संकोच होता है, हमको इधर वन में ही रहने दो। जब आप वन में आएंगे आपका दर्शन करेंगे, आपके चरण कमलों से उत्पन्न हुआ जो सुगंध है उसको हमेशा सूंघते अपने आप को संतुष्ट रखेंगे। लेकिन कृष्ण ने फिर भी समझाया कि आप जाओ। और उसी समय क्या हुआ, एक द्विजपत्नी उधर उनको छोड़ा नहीं गया था, उनके पति और उनके पुत्रों ने पकड़ के रख दिया था। तो वो एक जो द्विजपत्नी हैं ब्राह्मण पत्नी हैं, उन्होंने क्या किया कि कृष्ण का विरह में अपना शरीर को त्याग किया, उनको एक आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त हुआ। तो आध्यात्मिक स्वरूप में भागे भागे कृष्ण के पास आई और अन्य द्विजपत्नी उनका संग उनको स्पर्श की, तो उनका आध्यात्मिक शरीर के द्वारा उनको स्पर्श करने की वजह से सारे जितने द्विजपत्नियों को आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो गया। और उधर वर्णन करते सुखदेव गोस्वामी, तब से वापस गए द्विजपत्नी सब अपने घर में गए, तो तब से उनके पतियों का एक बार भी स्पर्श नहीं हुआ, वो कोई कर ही नहीं पाता है क्योंकि उनका आध्यात्मिक शरीर है। तो वो हमेशा कृष्ण को स्मरण करते हुए अपने दिव्य आनंद में थी, ऐसा हमने चर्चा किया। जब वो वापस गए उनको डर था कि पति लोग हमको स्वीकार करेंगे कि नहीं, लेकिन पति भले ही ब्राह्मण क्योंकि ब्राह्मण थे लेकिन वो समझ नहीं पाए कि कृष्ण, लेकिन उनको थोड़ा बहुत ज्ञान था और कृष्ण का आशीर्वाद भी था, इसलिए उन्होंने पत्नियों को स्वीकार ही नहीं किया बल्कि उनको प्रणाम करके उन्होंने कहा कि हम तो मूर्ख है, हमसे बढ़कर आपका भक्ति है, द्विज पत्नियों ने अपनी वो ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों को गुरु के रूप में स्वीकार किया, उनका और गुणगान किया, ये सब हम कल चर्चा किए। लेकिन एक बात की कमी रह गई। क्या कमी रह गई? कि द्विज ब्राह्मणों को मालूम था अभी भी कृष्ण उधर ही है, तुरंत जा सकते, दर्शन लेने के तो जा सकते हैं, वो गए नहीं। तो उनको क्या डर था, एक कंस ना आ जाए, कंस आके कहीं हमको हमको दंड ना दे, क्योंकि उनको मालूम था कि कंस जो है कृष्ण को मारना चाहते हैं। अगर कंस को मालूम पड़ा कि ब्राह्मण लोग कृष्ण का भक्त बन गए, उनका दक्षिणा मिलना बंद हो जाएगा, ऐसा कोई चिंता था उनको, इसलिए वो लोगों ने अपनी भक्ति जो हृदय में रखा, वो बाहर प्रकट नहीं किया। इतना हद तक हम कल चर्चा किए थे। आज आगे बढ़ेंगे। एक बड़ा प्रसिद्ध लीला भगवान का, बहुत सुंदर लीला है, यह है गोवर्धन लीला। तो एक दिन में समाप्त नहीं करेंगे, आज और कल इस लीला को चर्चा करेंगे, इसका थोड़ा सा डिटेल्स भी चर्चा करने के लिए प्रयास करेंगे। तो पहले ही हम जब वेणु गीत का चर्चा कर रहे थे, उस समय वेणु गीत की चर्चा में एक बहुत सुंदर श्लोक को चर्चा किए, जिसके अंदर गोपियाँ गोवर्धन का गुणगान करते हैं। तो इस लीला का हम आरंभ करेंगे वो गुणगान को एक बार पुनः श्रवण करके। गोपियाँ कहती है कि ये वेणु गीत में, हंतायम अद्रि अबला हरिदास वर्यो, वो कहते हैं ये जो हंता अहो कि अयम, ये जो गोवर्धन है ये कौन है, ये हरिदास वर्यो, ये अद्रि जो है ये हरिदास वर्य। श्रीमद् भागवत में युधिष्ठिर महाराज को हरिदास वर्य कहा गया है, इनको भी हरिदास वर्य कहा गया है। हरिदास वर्य कि यद राम कृष्ण चरण स्पर्श, ये कृष्ण और बलराम की चरण की स्पर्श से वो एकदम बड़ा आनंदित हो रही है और एकदम प्रमत्त हो गए एकदम। और इतना ही नहीं, उनकी सेवा के लिए घास और फूल पुष्प जितना भी लीला की आवश्यकता है हर चीज़ वो प्रदान कर रही है। बाकी सब जितने भी वृंदावन के वृक्षों का वर्णन हुआ है या यमुना का वर्णन हुआ है, ये सब भगवान की वेणु गीत को श्रवण करके आनंद में आनंद विभोर हो गए या अचंभित हो गए, ये सब कुछ वर्णन है। लेकिन सेवा का जब स्थान आता है, गोवर्धन का महान स्थान है, तब ये गोवर्धन भी भगवान की ये वेणु का गीत का श्रवण करके क्या हो रहा है, वो भी एकदम आनंदित हो रहा है, पुलकित हो रहा है। इस प्रकार ये व्रज गोपियों ने गोवर्धन का महिमा का वर्णन किया। तो अभी ये गोवर्धन लीला का शुरुआत होता है। तो ये शुरुआत होने से पहले गोवर्धन का थोड़ा सा प्राकट्य के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, और आज गोवर्धन को किस प्रकार भगवान पूजा किए उसका वर्णन करेंगे, और परिक्रमा किए उसका वर्णन करेंगे, और थोड़ा सा हम मानसिक परिक्रमा भी करेंगे गोवर्धन के अंत में, समय बचा तो मुख्य प्रमुख स्थानों का थोड़ा सा मन में ही स्मरण करते हुए उसका चर्चा करने के लिए प्रयास करेंगे। तो बाद में भगवान ने गोवर्धन को कैसे उठाया और किस प्रकार इंद्र का अहंकार का नष्ट हुआ, और कैसे इंद्र सुरभि गाय को लेके भगवान की स्तुति किए, वो सब कल चर्चा करने के लिए प्रयास करेंगे। सबसे पहला गोवर्धन ये है। गोवर्धन तो उधर हिमालय के पर्वतों के साथ में उनका प्राकट्य हुआ। भगवान जब प्रकट होते हैं तो प्रकट होने से पहले अपने पार्षदों को पहले प्रकट कराते हैं। तो राधा रानी को भी उन्होंने कहा, हे राधे आप जल्दी प्रकट हो जाइए क्योंकि हमको लीलाएं करना है। तो राधा रानी ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी पृथ्वी में। तो उन्होंने कहा कि जहाँ यमुना नहीं है, यहाँ जहाँ गोवर्धन नहीं है, जहाँ वृंदावन नहीं है, मुझे नहीं जाना है। तो भगवान ने कहा आप चिंता मत करो, पहले यमुना महारानी को आदेश दे चुका हूँ, और वृंदावन धाम भी है और गोवर्धन को भी मैं आदेश दे चुका हूँ। तब राधा रानी ने माना, लेकिन एक कंडीशन पे माना कि ठीक है मैं जाऊँगी, लेकिन एक शर्त पर, जब तक आप प्रकट नहीं होंगे तब तक मैं कोई चीज़ को देखूंगी नहीं। तो इसलिए राधा रानी जब प्रकट हुई तब उनका पूरा आंख बंद तवांदी थी। तो सबसे पहला दर्शन केवल कृष्ण का किया और गोवर्धन का प्राकट्य इस प्रकार है। तो पुलस्त्य मुनि जब गए थे हिमालय के पास, उनको गोवर्धन बहुत पसंद आया, तो गोवर्धन ने उनको बहुत सेवा किया। तब जाके उन्होंने बोला गोवर्धन को, मेरे साथ चलो। तो गोवर्धन ने कहा ठीक है, फिर पिताजी का आज्ञा लेके चलता हूँ। पिताजी का आज्ञा लेके गोवर्धन ने कहा कि फिर मैं चलूँ, लेकिन उठा के कौन लेके जाएगा। पुलस्त्य मुनि ने कहा ठीक है, उठा के लेके चलता हूँ। तो उठा के वो आ रहे थे, उनको जाना था काशी। तो नीचे की दक्षिण की ओर आए हिमालय से, और जैसे वो व्रज भूमि में आए तो पुलस्त्य मुनि को बहुत जोर का पेशाब लगा, तो सहन नहीं कर पा रहे थे। एक कंडीशन था गोवर्धन का, आप जहाँ मुझे रखेंगे उधर रह जाऊँगा, बाद में उठूँगा नहीं। तो गोवर्धन का ये प्लान था कि किस प्रकार मैं व्रज में जाऊँ। तो वो प्लान जैसे ये जिस प्रकार पुलस्त्य मुनि को ऐसा लगा, तो पुलस्त्य मुनि गोवर्धन को रखे, उस समय भूल गए कि कंडीशन। गए जाके वापस आए तो गोवर्धन को उठाने के लिए गया, गोवर्धन ने कहा मैं हिलूँगा नहीं, मैं इधर ही रहने वाला हूँ। तो पुलस्त्य मुनि को बहुत गुस्सा आया, गुस्से से उन्होंने कहा कि तुम क्षीण होते जाओगे, प्रत्येक साल में एक एक राई ऐसा कम होते जाओगे, एक दिन में एक राई का साइज कम हो गया, ऐसा कुछ वर्णन है। तो इसलिए गोवर्धन का साइज जो है धीरे धीरे से कम होता है, और कलयुग के 10,000 साल तक गोवर्धन पूरा लुप्त हो जाएगा, या कलयुग के प्रारंभ होके 5,000 साल के बाद जो 10,000 साल है तब तक यमुना महारण गोवर्धन लुप्त हो जाएगा। व्रज में कृष्ण के समय के 3 चीज़ें अभी भी है, एक है गोवर्धन, दूसरा है यमुना महारानी यमुना नदी, और तीसरा है व्रज रज। ये तीनों वैसा का वैसा ही है। तो बहुत सारे परिवर्तन हुए 5,000 साल में, लेकिन ये 3 चीज़ें तब से अभी तक वही है, गोवर्धन यमुना महारानी। इसी गोवर्धन को भगवान ने उठाया, आप दर्शन करते हो, और यही यमुना में भगवान ने बहुत सारे लीलाएँ की, और वही व्रज रज जिनके ऊपर भगवान ने अपने चरण कमलों को नंगे पैर चलते थे, और चरण चिन्हों के द्वारा सुसज्जित ये वही व्रज रज है, वही वृंदावन है। तो जैसे ये ब्राह्मण द्विजपत्नियों का उद्धार का लीला हुआ, उसके नज़दीक में ही भगवान थोड़ा सा मुड़ के देखे दूर से गोवर्धन की तलेटी पे कुछ उत्सव का कार्य चल रहा था। तो उनको पता लगा कि उनके पिताजी है और अन्य लोग भी है, तो उन्होंने सोचा कि हर साल करते हैं, मैं जाके पूछता हूँ क्या है। तो ये जो द्विजपत्नियों का जो उद्धार का जो स्थली है वो गोवर्धन के बहुत नज़दीक में है। अगली बार जब गोवर्धन जाएंगे तो आप अन्य और गाँव से और थोड़ा सा और सीधा जाना पड़ेगा, आपको उधर प्राप्त होगा। तो कृष्ण गए अपने सब ग्वाल बालों को साथ में लेके गए, और उस समय उन्होंने देखा उनके पिताजी बहुत एक्टिव थे। वैसे ऐसा होता है कि ये जो हर साल नंद महाराज ये उत्सव करते थे, लेकिन कृष्ण हर साल देखते थे मेरे पिताजी कर रहे, उनके पिताजी इस बार का इंचार्ज थे। ऐसा था कि टर्न लेते थे, उनके नंद उपनंद उनके भाई हर साल का, जो एक साल एक का टर्न आता था, दूसरे साल उनका टर्न आता था, इस बार जो है नंद महाराज का टर्न था। भले कृष्ण हर साल देख रहे थे कि इनके जो पिताजी उनके चाचा सब लोग ईसा करते हैं, ये गोवर्धन के पास आके कुछ तो कुछ पूजा करते हैं, लेकिन अभी उनको मालूम पड़ा कि मैं पूछता हूँ कि ये क्या कर क्या रहे हैं। तो कृष्ण पहुँचे और देखे कि बहुत बड़ा अनेकों सामग्रियों को इकट्ठा किया गया है, और पूजा का सामग्री है, हवन का सामग्री है, बड़े उत्सव के रूप में सब लोग उत्साह के साथ आए हुए हैं। तो कृष्ण परमात्मा हैं, वो जानते हैं कि ये सब लोग गोवर्धन का पूजा नहीं कर रहे हैं, ये पूजा किसका कर रहे हैं, इंद्र का कर रहे हैं। अभी कृष्ण को ज़रा पसंद नहीं आया, तो अभी तो थोड़ा बड़े हो गए, 7 साल के है, तो उन्होंने सोचा कि मैं अपने पिताजी को कहता हूँ, क्योंकि बचपन में बच्चा कुछ बोलता नहीं पिताजी को, लेकिन थोड़ा बड़ा होने लगता है ना तो पिताजी का कार्यों में थोड़ा टांग आना शुरू करता है। तभी कृष्ण ने ऐसे किया, तो जाके पिताजी से पूछा उन्होंने चार प्रश्न पूछा पिताजी से, क्योंकि अगर बुद्धिमत्ता से प्रश्न नहीं पूछा जाता है तो व्यक्ति सोचता है कि ये मूर्ख है, इसको क्या बताएं, टाल देता है। लेकिन भगवान बहुत बुद्धिमत्ता से प्रश्न पूछा, ये भाव से प्रश्न पूछा, पिताजी मैं पहले भी आपको ज़रा प्रश्न पूछ चुका हूँ, आपने इस प्रश्नों का जवाब नहीं दिया, अभी मैं प्रश्न बहुत टेक्निकली पूछ रहा हूँ, अभी मैं बड़ा हो चुका हूँ, अभी जवाब नहीं दोगे ये समझ लेना कि अभी मैं मानूंगा नहीं, अभी ऐसा मुझे उल्लू नहीं बना सकते हो, पहले बहुत बार उल्लू बना चुके हो। तो उन्होंने पूछा, मेरे पिताजी बताइए ये कार्य आप क्यों कर रहे हो, दूसरा ये बताइए कि ये कौन सी चीज़ की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहे हो, तीसरा ये बात बताइए कि आप किसकी संतुष्टि के लिए क्या कार्य कर रहे हो, और ये कार्य किस तरीके से संपन्न करने वाले हो, यानी क्या माध्यम है, क्या कौन सा वैदिक मंत्रों को उच्चारण करने वाले हो, कौन सा वेद को आप पठन करने वाले हो, इत्यादि प्रोसेस क्या है इस यज्ञ का। एक तो ये यज्ञ जो है असल में कर क्या रहे हो, दूसरा प्रश्न ये है कि इसके द्वारा आप क्या प्राप्त करने वाले हो, क्योंकि चीज़ कोई करा किया जाता है कोई चीज़ की प्राप्ति के लिए किया जाता है, और तीसरा है वो प्राप्ति तभी हो कोई किसी को संतुष्ट करने के लिए कर रहे होंगे तो कौन है वो व्यक्ति जिनको संतुष्ट करने के लिए कर रहे हो, और तीसरा है चौथा है ये करने का माध्यम क्या है वो बताइए। तो जैसे इनके पिताजी ने सुना, पिताजी को इस बात कहा कि मैंने सुना शास्त्रों में आप जो भी कार्य करते हो अज्ञान से करोगे तो आपको उसका फल नहीं मिलेगा, पूरा जानकारी के साथ होना चाहिए। दूसरे शब्दों में कृष्ण ने अपने पिताजी को कहा, आप अगर इन प्रश्नों का जवाब नहीं दोगे मैं ये समझूंगा कि आपको भी नहीं मालूम, तो अगर आपको नहीं मालूम है तो ऐसा क्यों कर रहे हो, तो मैं मूर्ख नहीं हूँ तो आप मूर्ख बन जाओगे, मुझे कहना ही पड़ेगा आपको। तो आगे उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे इस प्रश्न का जवाब नहीं दोगे तो आप सिद्ध हो जाओगे कि आप साधु नहीं हो, क्योंकि साधु का स्वभाव होता है कि सबको समग्र दृष्टिकोण से देखना, अभी मैं बच्चा नहीं हूँ ये बात सिद्ध करने के लिए सारे बातें कह रहे, आप तो महान हो, महान व्यक्ति जो हर व्यक्ति को समान दृष्टिकोण से देखता है, चाहे बड़ा हो छोटा हो सब समान है उनके सामने, अभी ये मत सोचिए कि मैं छोटा हूँ तो इसलिए आपको इन प्रश्नों का जवाब देना ही होगा। तो ये बात भी नहीं है, आपको ये नहीं सोचना चाहिए तो अरे तो बच्चा है मेरा है इसको नहीं बोले तो चलेगा, ऐसा नहीं, मित्र हो बच्चा हो बूढ़ा हो या दुश्मन हो, साधु सबको समान दृष्टिकोण से देखता है कि आपको तो इन प्रश्नों का जवाब देना ही होगा। इस बात पे एकदम अपना जिद व्यक्त किए कि कृष्ण बहुत ज़िद्दी है तो अपना जिद को पकड़ के बैठ के इन प्रश्नों का जवाब दो। तो नंद महाराज चुपचाप रहे, उन्होंने कुछ नहीं बोला, ही डिड नॉट से एनीथिंग। तब आगे कृष्ण अभी सोचा कि अभी ये जवाब नहीं मिल रहा है तो मैं अपना प्रवचन सुनाता हूँ। तो कृष्ण अपना प्रवचन सुनाना शुरू किया, अगर आप नहीं दोगे तो मेरा मत सुनो, मेरा मत यह है कि आपको ये नहीं करना चाहिए, उसने अंत में कहा, लेकिन आपको ये जो गोवर्धन का जो पूजा कर ये जो इंद्र का पूजा करने के लिए जो प्रयास कर रहे हो, मैं चाहता हूँ कि ये पूजा आप मत करो, ये करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बात को सिद्ध करने के लिए भगवान ने बहुत सुंदर दार्शनिक तर्क को प्रस्तुत किया। ये जो तर्क है जो भगवान ने प्रस्तुत किया, ये आचार्य के अनुसार चार तर्क कर्म मीमांसा सिद्धांत के ऊपर आधारित होकर किया, दो तर्क उन्होंने सांख्य सिद्धांत के ऊपर आधारित होकर किया। तो ये अस्तित्व में सांख्य सिद्धांत और कर्म मीमांसा सिद्धांत ये गलत सिद्धांत है, गलत सिद्धांत होने पर भी भगवान ने ये तर्क क्यों दिया, वैसे भगवान को तो गलत सिद्धांत को पेश नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्हें क्यों किया, केवल इसलिए किया ये बताने के लिए गलत सिद्धांत के द्वारा भी देखा जाए ये जो कार्य कर इंद्र का इंद्र को प्रसन्न करने का जो ये यज्ञ है वो बेकार है। जब एक गलत सिद्धांत के अनुसार ये बेकार है तो सही सिद्धांत के अनुसार तो बेकार होगा ही। तो इस तरीके से जैसे एक बड़ा विद्वान पंडित होता है, उस प्रकार कृष्ण ने अपनी पंडिताई को दिखाया। अभी तक कृष्ण इतना पंडिताई को दिखाई नहीं, अभी गोवर्धन जैसे गोवर्धन का पूजा के समय उन्होंने दिखाया, ऐसा चर्चा कृष्ण ने पहले कभी किया नहीं है। इस प्रकार विद्वानों ने वाली बात, अभी कृष्ण अभी बड़ा विद्वानों वाली बात कहते हैं। तो इसका सार श्रीधर स्वामी कहते हैं, कृष्ण ने 6 तर्कों को प्रस्तुत किया। तो ये 6 तर्क क्या है सार रूप में जानेंगे, बाद में उसको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला तर्क कृष्ण ने प्रस्तुत किया कि हर चीज़ जो भी व्यक्ति को प्राप्त होता है कि हमको कर्मों के हिसाब से प्राप्त होता है। कि तो आप अगर ये सोच रहे हो कि हम इंद्र को प्रसन्न करना है, क्योंकि नंद महाराज ने कहा कि हे कृष्ण देखो हम तो ग्वाल बाल है और गायों को चराने वाले हैं, और गाय तो घास खाती है, घास तो बारिश की वजह से उगता है, और बारिश प्रदान करने वाले कौन है, इंद्र है, तो इंद्र को तो संतुष्ट करना हमारा कर्तव्य बनता है, तो इंद्र हमारे आराध्य देव है तो इसलिए करना होगा। ऐसा उन्होंने नंद महाराज ने कृष्ण को जवाब दिया। बाद में कृष्ण इसकी बदले में उन्होंने सबसे पहला तर्क प्रस्तुत किया, आपको इंद्र को संतुष्ट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको घास या गायों की घास जो भी प्राप्त होता है कर्मों के हिसाब से प्राप्त होता है। इधर इंद्र कहाँ आया है? इंद्र केवल अपना ड्यूटी कर रहा है, उसको ड्यूटी करना उसका कर्म है, लेकिन मुझे जो प्राप्त होता है मेरे कर्मों की वजह से प्राप्त होता है, इंद्र का इधर क्या लेना देना है। तो दूसरा उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति अपना स्वभाव के अनुसार कार्य करता है, और इंद्र का इंद्रत्व उनका स्वभाव है, आप अगर उनको पूजा करो ना करो वो अपने स्वभाव तो करेगा ही, तो चिंता मत करो, वो एक मशीन जैसा काम करेगा, उनको संतुष्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आगे उन्होंने कहा कि ये 2 तर्क कर्म मीमांसा के तर्क है, और 3रा तर्क उन्होंने प्रस्तुत किया सांख्य सिद्धांत के अनुसार। आप जो बोल रहे हो बादल जो है वो बारिश गिराना, ये रजोगुण का कार्य है, और ये बारिश जब गिरता है घास का उत्पत्ति होना ये भी रजोगुण का कार्य है, और इन सबको मेंटेन करना जो है, ये प्रकृति को संभालना ये सत्वगुण का कार्य है। तो स्वाभाविक गुणों का संसर्ग के वजह से अपने आप प्रकृति चलता है, तो प्रकृति के लिए पीछे कोई कंट्रोलर की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार उन्होंने सांख्य सिद्धांत को प्रस्तुत किया। ये कर्मीमांसा सिद्धांत सांख्य सिद्धांत क्या है हम थोड़ा सा बाद में चर्चा करेंगे। बाद में 4था उन्होंने कहा, भगवान या आप जिनको भगवान मानते हो वो भी कर्म के वश में है, यानी आप अच्छा करोगे तो उनको अच्छा देना ही पड़ेगा। तो इधर इंद्र को इसको मानने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपके हाथ में है, आपका कर्म आपके हाथ में है। तो आगे उन्होंने कहा, भगवान भी कर्म के नियंत्रण में है, और अंततः 6ठा सिद्धांत उन्होंने कहा कि कर्म ही पूजा है। तो कर्म ही पूजा है तो फिर आपको इंद्र को पूजा करने की क्या ज़रूरत है, बस अपना काम करते जाओ, यही पूजा समझ के कर लेना, यही सैक्रिफाइस है, यही यज्ञ है। तो ये श्री स्वामी पूरा 6-7 श्लोकों का कृष्ण का तर्क का 6-7 श्लोकों का सार निकाल के हमको हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। अब देखिए कि कर्म सिद्धांत या कर्म मीमांसा सिद्धांत और सांख्य ये होता क्या है, इसका थोड़ा सा जानकारी होना आवश्यक है। भले ही तत्व विचार है ये, तो लीला के अंतर्गत ये थोड़ा सा ज्ञान होना आवश्यक है। वैसे वैदिक दर्शन मतलब 6 दर्शन माना जाता है, 6 दर्शन है, 6 सिस्टम्स ऑफ फिलासफी है। प्रभुपाद जी की किताबों में बहुत जगह पढ़े होंगे, खास करके एक प्रभुपाद जी भागवतम में पहला स्कंद के पहले अध्याय के सातवें या आठवें श्लोक में एक जगह लिखते हैं कि जो व्यक्ति ये षड दर्शन को नहीं जानता है वो व्यासाश्रम पर बैठना नहीं चाहिए। तो बहुत सारे लोगों को षड दर्शन करके कुछ है करके वो भी नहीं मालूम, लेकिन प्रभुपाद लिखते हैं कि षड दर्शन को जानता नहीं है तो उसको व्यासाश्रम पर बैठने का अधिकार नहीं है। तो षड दर्शन की जानने की बात क्या है, कम से कम नाम तो मालूम करे। तो सबसे पहला है न्याय, दूसरा है वैशेषिका, तीसरा है सांख्या, चौथा है योगा, पांचवा है पूर्व मीमांसा या कर्म मीमांस, और छठा है उत्तर मीमांस या वेदांत सूत्र या वेदांत। तो ये षड दर्शन माने जाते हैं, न्याय वैशेषिक सांख्य योग पूर्व मीमांस उत्तर मीमांस, ये षड दर्शन है। तो इसमें न्याय के अनुसार, न्याय और वैशेषिक के अनुसार ये दोनों, वैसे तो इसमें से छः में से पहले पांच जो है वो नास्तिक है, उसको स्वीकार नहीं किया जाता है। वो सब भले ही वेद उनके ऊपर आधारित है लेकिन वो एथिस्टिक है। तो उसमें ये न्याय और वैशेषिक है वो आजकल के साइंटिस्ट लोगों का सिद्धांत है उसके बराबर है। वो सोचते हैं कि बस अणु ही सब कुछ है, अणुओं से ही जब बना हुआ, कोई नियंता नहीं है, कोई आध्यात्मिक चीज़ वस्तु ऐसा कुछ है ही नहीं, एटम्स आर एवरीथिंग, न्याय एंड वैशेषिका। एटम्स आर द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, न्याय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, अणुओं का जो मिश्रण है यही सब कुछ है, यही सब कुछ का स्रोत है, ऐसा मानने वाला सिद्धांत है न्याय और वैशेषिक। उसके बाद न्याय वैशेषिक सांख्य, ये सांख्य सिद्धांत जो एथिस्टिक कपिला नास्तिक कपिल के द्वारा स्थापित सांख्य सिद्धांत है। तो इसमें इतना गहरा जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इतना जानना चाहिए कि सांख्य के अनुसार कोई भगवान नहीं है, बस सब कुछ प्रकृति के अंतर्गत चल रहा है। जैसे भगवान भगवती में कहते हैं कि मया अध्यक्षेण प्रकृति ही, वो इस बात को स्वीकार नहीं करते, वो सोचते हैं प्रकृति स्वतंत्र है और पुरुष भी स्वतंत्र है, यानी आत्मा भी स्वतंत्र है, ये दोनों पुरुष प्रकृति संयोगात, ये दोनों जब मिक्सचर होता है तब ये सृष्टि उत्पन्न होता है। इस उसको नास्तिक सांख्य कहा जाता है। उनके अनुसार सांख्य दर्शन के अनुसार ये प्रकृति इज अ सोर्स ऑफ एवरीथिंग, मेटीरियल नेचर इज सोर्स ऑफ एवरीथिंग, प्रकृति ही सब कुछ है, प्रकृति से सब कुछ उत्पन्न होता है। पहले तो न्याय वैशेषिक में एटम्स या अणु को माना गया है और सांख्य में प्रकृति को सब कुछ माना गया है। तो इधर कृष्ण ने तर्क दिया अंत में भगवान का अपने पिताजी को, पिताजी ये जो भी कार्य हो रहा है, बारिश गिरना, घास उगना, ये सब प्रकृति के हिसाब से हो रहा है, तो इसमें इंद्र का कोई लेना देना नहीं है, तो इंद्र का पिक्चर में ही नहीं आता है। तो सांख्य सिद्धांत के अनुसार भगवान ने तर्क पेश किया कि आपको ये डरने की ज़रूरत नहीं है कि इंद्र गुस्सा हो जाएंगे, बारिश नहीं देंगे, बारिश इंद्र की वजह से नहीं मिल रहा है हमको, ये रजोगुण की वजह से मिल रहा है। तो रजोगुण को तो पूजा की कोई ज़रूरत नहीं, अपना कार्य करता है, ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। तो उसके बाद सांख्य सिद्धांत के बाद और एक है, इसको कहा जाता है कर्म मीमांसा या पूर्व मीमांसा, सॉरी इसके बाद योग, ये चौथा योग है, योग सिद्धांत। योग के अनुसार जो पतंजलि योग सूत्र आपने सुना होगा, तो योग सिद्धांत के अनुसार ऐसा है कि यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, ये जो सर्वव्यापी चेतना है यही सब चीज़ का स्रोत है, ऐसा उनका मानना है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। तो उन वो भी योगी लोग भी परमात्मा परमात्मा कहते हैं कि पतंजलि योग सूत्र वाले, लेकिन वो योगी वास्तविकता में वास्तविक परमात्मा को स्वीकार नहीं करते, वो एक नकली और झूठा परमात्मा है उनका। यानी उनके अनुसार जैसे एक उदाहरण बताया जाए कि एक आप लोग मैथमेटिक्स पढ़े होंगे, गणित पढ़े होंगे, तो मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्यूशन सॉल्व करने के समय कभी शुरुआत में हमको मान के चलना पड़ता है लेट एक्स इक्वल टू दिस है कि नहीं, तो उसके बाद आप करते करते जाओ तो पूरा सॉल्यूशन में एक्स 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 बहुत सारे एक्स दिखाई पड़ेंगे और अंत में वो एक्स दिखाई नहीं पड़ेगा। शुरुआत में एक्स नहीं था, अंत में एक्स नहीं था, बीच में एक्स बहुत सारे एक्स है, यानी वो मान्यता मात्र है। जैसे लोग बोलते हैं ना हम भगवान को मानते हैं, खाली मान्यता है कि नहीं मालूम नहीं, मानते बस। तो ऐसे ये योग सिद्धांत। उसके बाद है कर्म मीमांसा, कर्म मीमांसा सिद्धांत के अनुसार ये है कि वो कहते हैं कि भगवान भी कर्म के वशीभूत में है। भगवान भगवद्गीता में कहते हैं कि नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, ये चीज़ को स्वीकार नहीं करते। वो सोचते हैं कि जैसे कभी कभी बच्चों को माता पिता कहते हैं ना, बेटा हाँ तुम अच्छा करो तो अच्छा मिलेगा ही, असत में अच्छा करने से अच्छा नहीं मिलता है। हाँ तो आप तुम ये सुन के बहुत घबरा जाएंगे, सही बात है, अच्छा करने से भगवान अच्छा देते हैं, अगर नहीं देना चाहते तो नहीं भी दे सकते हैं, जनरली देते हैं। लेकिन ये कर्म नाम सिद्धांत के अनुसार लोग सोचते हैं मैं ऐसा कार्य करूँगा, ऐसा अच्छा कार्य करूँगा, ऐसा कुछ वैदिक कार्य करूँगा जिसके द्वारा भगवान बाध्य हो जाएंगे मुझे उसका फल देने में। यानी वो सोचते हैं कि कर्म के नियम के अंतर्गत भगवान आते हैं, ही इज़ बाउंड अंडर कर्म, भगवान बाध्य है भक्ति के द्वारा, कर्म के द्वारा बाध्य नहीं है। इसलिए वो लोग सोचते हैं कि कर्म ही पूजा है, तो कर्म करते जाओ फल मिलेगा ही, ये गलत बात है, ऐसा नहीं है। भगवान कर्म फल प्रदाता है, वो देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहे तो नहीं दे सकते, जनरली देते हैं, इसका मतलब ये कि देंगे ही नो। और उनके अनुसार केवल स्वर्ग में जाके इंद्र तृप्ति भोगना ही उनका मुक्ति है। हाँ तो ये बड़ा नास्तिक और असुरी सिद्धांत है, गहरा में नहीं जाएंगे ये कृष्ण लीला के संपर्क में, लेकिन ये जानना चाहिए कि भगवान ने ये कर्म थियरी से अपने पिताजी को कन्विंस कर दिया, कर्म और सांख्य थियरी से, कि हे भगवान हे पिताजी आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो नंद महाराज का ने एक आर्ग्यूमेंट था, हमने सुना है कि शास्त्रों में कि जब तक देवताओं को प्रसन्न नहीं किया जाता है तब तक हमको कुछ प्राप्त नहीं होता है। तब कृष्ण ने कहा कि ये देवता लोग भी अपने कर्म कर रहे हैं, अपना ड्यूटी कर रहे हैं, ये डिपेंड नहीं करता कि आप उनको दे रहे हो कि नहीं, क्योंकि देवता लोग भी अच्छे हैं। जैसे आप गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हो तो गवर्नमेंट ऑफिस में आप क्या रिश्वत देने से काम होता है, तो ये देवता लोगों की ऑफिस में ऐसा नहीं है, ये अच्छे लोग हैं, अच्छे ऑफिसर है, बिना रिश्वत का भी वो काम करेंगे, रिश्वत देंगे तो और बुरा मान जाएंगे, वो अपना ड्यूटी कर रहे हैं, तो इंद्र भी अपना ड्यूटी करेगा, उनको रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे आर्ग्यूमेंट उन्होंने कहा कि इस प्रकार का आर्ग्यूमेंट, तो आनंद महाराज थोड़ा शांत हो गए। तब कृष्ण ने कहा देखो अगर सच में पूजा करना ही है, पूजा करना चाहिए गोवर्धन का, गायों का और ब्राह्मणों का करना चाहिए, गायों का पूजा करना चाहिए। गायों का पूजा क्यों करना है, क्योंकि वही हमको दूध देती है, और गायों को घास कौन दे रहा है, गोवर्धन दे रहा है। और भगवान ने आखिरी आर्ग्यूमेंट उनको कहा नंद महाराज को कि बारिश तो पत्थर की ज़मीन के ऊपर भी गिरता है, बारिश तो समुंदर में भी गिर रहा है, क्या उधर घास उग रहा है क्या? बड़ा पावरफुल आर्ग्यूमेंट था कृष्ण का। तो नंद महाराज तो एकदम पूरा फेल हो गए उस आर्ग्यूमेंट के सामने। तो नंद महाराज का आर्ग्यूमेंट था कि बारिश गिरने की वजह से घास उगता है, अगर वैसा है तो बारिश तो समुद्र में भी गिर रहा है, तो समुद्र में घास क्यों नहीं उग रहा है? तो घास बारिश की वजह से नहीं उग रहा है, हमारे गोवर्धन की वजह से उग रहा है। तो उनका कंक्लूजन ये था लास्ट में। तो बड़ा चतुर है कृष्ण। इतना ये नहीं है, और इतना 7 साल का, कभी कभी ऐसा होते है, और कभी बच्चा खास करके 5 साल तक तो ठीक है, वो खास करके 7 साल का बच्चा है ना, वो होता ही ऐसा टेढ़ा। चाहे वो कृष्ण हो या आपके घर में भी बच्चा भी होगा, 7 साल होते है ऐसा ऐसा आर्ग्यूमेंट देता है, पिताजी को चुप होकर कोने में बैठना पड़ता है। अनुभव किएंगे बहुत सारे पिताजी लोग, जो ये 7 से 10 साल का जो गैप है ना, बहुत डेंजरस पीरियड है, उसके साथ ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए, हार जाएंगे। तो पिताजी बोलेंगे बेटा पढ़ाई किया क्या, तुरंत बोलेंगे तो ठीक है पढ़ाई तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे बुद्धू मत समझो, क्या आपको कंप्यूटर चलाना आता है क्या, आपको मोबाइल चलाना नहीं आता, क्या बात करते हो, ऐसा सीधा मुँह पर बोल देता है, तो पिताजी को चुप रहना पड़ता है कि नहीं, कुछ भी आर्ग्यूमेंट कर। तो वैसे कृष्ण ने भी इसी प्रकार नंद महाराज को चुप कराया। एक आद ब्राह्मण मेंटेन हिज लाइफ बाय स्टडिंग द वेदिक स्क्रिप्चर्स, members of the royal order by practicing by protecting the earth, Vaishyas by trade and Shudra by serving the higher class. तो उन्होंने चार वर्ण का विभाजन बताया कृष्ण ने. देखो हमारा ये जो चार वर्ण हैं और चार आश्रम हैं, ये चार वर्ण के लोग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र. ब्राह्मण अपना जीवन यापन करते हैं शास्त्रों का अध्ययन करके, और क्षत्रिय भू पालन करके, वैश्य जो है अपना वैश्य की प्रवृत्ति करके, और शूद्र जो है वो ऊपर की जातियों को सेवा करके अपना जीवन यापन करता है. तो कृष्ण ने कहा खास करके जो वैश्य है उनका चार कार्य होता है, कृषि, वाणिज्य, गोरक्षा, और ये चार उनका कार्य होता है. कृषि मतलब खेती करना, दूसरा है वाणिज्य, वाणिज्य मतलब कॉमर्स या ट्रेडिंग करना, व्यापार करना, और तीसरा है गायों की संरक्षण करना, और चौथा है पैसे को उधार पे देना और उसका ब्याज इकट्ठा करना. ये चार कार्य वैश्य का होता है. भगवान ने इनको कहा, नंद महाराज को कहते हुए, ये चार कार्यों में हम वैश्य हैं. चार कार्यों में हमारा कार्य क्या है, हम गोरक्षा करते हैं, गौ को देखभाल करते हैं, गाय को संरक्षण करना और उनको देखभाल करना ये हमारा कर्तव्य है. और ये जो गायों को देखभाल करने के लिए घास चाहिए, ये घास जो है हमको गोवर्धन प्रदान करता है. तो इसलिए अगर पूजा करना ही है हमको गोवर्धन का पूजा करना चाहिए, और इसलिए उनका नाम गोवर्धन है, गायों को वर्धन करने वाला है, गायों को संतुष्ट करने वाला है, तो इसलिए हमको हम गोवर्धन को पूजा करेंगे. तो कृष्ण ने आगे कहा गायों का पूजा करेंगे, गोवर्धन का पूजा करेंगे, और साथ साथ में ब्राह्मणों का भी पूजा करेंगे. और ये सब कहने के बाद नंद महाराज बहुत संतुष्ट हुए. तब कृष्ण के मुख से और सुनने का उत्सुक हुए. तो कृष्ण ने कहा मैं इतना ही नहीं कह रहा हूँ कि आपको पूजा करना चाहिए, पूजा कैसे करना चाहिए उसका विधि मैं बताऊँगा. तब सबसे पहला कृष्ण ने कहा कि सारे ब्राह्मणों को बुलाओ और एक सुंदर सा यज्ञ करेंगे, ताकि सबको ऐसा लगे कि हम कुछ वैदिक कार्य कर रहे हैं, इससे बहुत लोग जुड़ेंगे और यज्ञ के बाद इन ब्राह्मणों को खूब संतुष्ट करेंगे और उनको भोजन खिलाएंगे और उनको खूब दक्षिणा देंगे. जैसे संतुष्ट होने के बाद हम क्या करेंगे, गाय सारे जितने भी गाय है उनको अपनी हाथों से घास खिलाएंगे. वैसे तो गाय तो घास डाल दो खा लेता है, लेकिन ये हाथों से घास खिलाएंगे. और ये घास खिलाने के बाद गोवर्धन का पूजा करना है. गोवर्धन के लिए अति सुंदर सुंदर भोग बनाएंगे और प्रचुर मात्रा में, अधिक अधिक मात्रा में उनको भोग लगाएंगे. तो उसके बाद गोवर्धन का परिक्रमा करेंगे. कैसे परिक्रमा करेंगे, सुंदर वाद्य सामग्री सब लेके कीर्तन करते हुए, अपने आप को सुंदर सजाते हुए पूरा परिक्रमा करेंगे. तो इस प्रकार ब्राह्मण गाय और गोवर्धन का पूजा करेंगे करके ये कृष्ण ने विधि बताया. तो ये विधि बताने के बाद दिस इज़ माई आइडिया ओ फादर एंड यू मे कैरी आउट इफ़ इट अपील्स टू यू. तो भगवान ने भी कहा, जैसे अर्जुन को कहा था भगवान ने कि यथा इच्छा से ता करो, जो करना चाहो कर सकते हो, मैंने जो करना था कह दिया, तो आपको जो करना कहो. इस प्रकार का जो पूजा है वो गायों को, ब्राह्मणों को, गोवर्धन को अति प्रसन्न करने वाला है. और केवल इन लोगों को नहीं, अगर मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो ऐसा करो. लास्ट में एक छोड़ दिया, इफ मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, अगर मुझे खुश करना चाहते हो तो करो. तो नंद महाराज जैसे ये इन सब को सुने तो क्या किया, सब अपने साथियों को बुलाए, बुला के सबको कहे जो कृष्ण कह रहा वो ठीक है, जितना भी सामग्री इंद्र की सेवा के लिए, इंद्र के लिए इकट्ठा किया गया है अभी सब उधर बंद करो, इंद्र को नहीं करेंगे, अर्पण नहीं करेंगे, हम सब अभी इनका पूजा करेंगे, गोवर्धन का पूजा करेंगे. नंद महाराज के आदेश से सब लोग एकत्रित हुए और सारे गायों को सब सबको सामने रखे और अच्छी तरह से उनको सजाए और अपने आप को भी बहुत सुंदर सजाए. परिक्रमा शुरू हुआ. वैसे तो ब्राह्मणों का यज्ञ वगैरह चल रहा था कि उनको आदेश भी दिया कि आप अभी इंद्रा है स्वाहा इधर नाम हमारे समत को आप इसको गोवर्धन को अर्पण करो, ऐसा उनको आदे उनको निवेदन करके वो लोग बड़ा सुंदर परिक्रमा करना शुरू किया। जब गोवर्धन का परिक्रमा शुरू हुआ, बड़ा अद्भुत दृश्य सारे लोगों ने देखा। क्या अद्भुत दृश्य था? तो वो गोवर्धन के ऊपर या गोवर्धन ही एक बड़ा कृष्ण का रूप धारण किया और उन्होंने कहने लगा कि मैं गोवर्धन पर्वत हूँ, ऐसा वो कृष्ण ही कहने लगे। यानी दूसरे शब्दों में कृष्ण में गोवर्धन पर्वत में अंतर नहीं है, लेकिन वो सेवक भगवान है, उनमें कोई अंतर नहीं है। जैसे आपको परसों इस बात के ऊपर चर्चा कर रहे थे कि गोवर्धन अस्तित्व में भगवान की हृदय से उत्पन्न हुआ है राधा रानी की संतुष्टि के लिए। ये गोवर्धन का प्राकट्य आध्यात्मिक जगत में गोलोक वृंदावन धाम में इस प्रकार हुआ। राधा रानी ने पूछा कृष्ण से, हे कृष्ण हम मैं बहुत बोर हो चुकी हूँ हर बार इधर उधर जाना, ऐसा जगह बचाओ जहाँ हर चीज़ प्राप्त हो। यमुना में जाएंगे खाली पानी है, बाहर आएंगे खाली वृक्ष है, और कहीं जाएंगे घास मिलता है, और कहीं जाएंगे कुंज है, लेकिन हर चीज़ एक जगह हो कौन सा जगह है? तो मुझे हर चीज़ एक ही जगह हो ऐसा स्थल ही चाहिए। तब भगवान ने अपने हृदय से गोवर्धन को प्रकाशित किया, उनका ही प्रेम है गोवर्धन, तो कृष्ण का ही प्रेम है, तो कृष्ण और कृष्ण प्रेम में कोई अंतर नहीं है। तो भगवान ने इस प्रकार प्रकाशित किया। क्यों? क्योंकि ऐसे कुछ लोग थे जो सोच रहे थे ठीक है नंद महाराज ने कहा इसलिए पर्वत का गोवर्धन का हम परिक्रमा करेंगे, तो पूरा विश्वास नहीं था जो हम कर रहे हैं कि ठीक है कि नहीं। कृष्ण ने कह दिया, बच्चा है कुछ भी कहता है तो पिता तो उनका बात मान के घूम रहा है, ऐसा लोगों के मन में विचार था। लोगों के मन में ये विश्वास उत्पन्न कराने के लिए कि आप जो कर रहे हो वो बड़ा श्रेष्ठ कार्य है, इसके लिए भगवान ने क्या किया, ये गोवर्धन का ही अपना स्वरूप दिखा दिया, मैं ही गोवर्धन हूँ, ऐसा उन्होंने घोषणा किया। ऐसा जैसे घोषणा करते सभी लोग एकदम अचंभित हो गए, तो सब लोग देखना देखो देखो ये जो गोवर्धन है ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कृष्ण ही है, हमारे कृष्ण है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और कितना कृपा बरसा रहे हमारे ऊपर करके वो और उत्साह के साथ परिक्रमा निकलने लगे। दिस गोवर्धन विल अज्यूम एनी फॉर्म विशेस विल किल एनी रेजिडेंट ऑफ द फॉरेस्ट। बाद में कुछ तो कहने लगे अरे ये किसी को भी मार सकता है, इनको ही पूजा करना होगा, चलो चलो हमारे जो संरक्षण के लिए हमारे पुत्रों के संरक्षण के लिए उनको पूजा करना होगा, क्योंकि कुछ लोग तो भयभीत भी थे। तो भगवान ने हर प्रकार के जितने ब्रजवासी उनको गोवर्धन पूजा में गोवर्धन के प्रति विश्वास उन्हें बढ़ाया। तो वैसे करते करते वो पूरा परिक्रमा भगवान ने इस गोवर्धन का कराया। द मेंबर्स ऑफ द कवर्ड कमेटी हैविंग दस बीन इंस्पायर्ड बाय कृष्णा ये प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड सैक्रिफाइस टू गोवर्धन हिल द काउज ब्राह्मणस एंड रिटर्न टू कृष्णा रिटर्न विद कृष्णा टू देयर विलेज। फिर वापस अपने नंदगांव वापस पहुँचे। तो इस प्रकार भगवान ने जितने भी ब्रजवासी है सबसे पहला गोवर्धन परिक्रमा उन्होंने कराया, तब से अभी तक गोवर्धन परिक्रमा चालू है। तभी देखिए हम वृंदावन जाते हैं, भक्त लोग बहुत प्रेम से गोवर्धन परिक्रमा करते हैं। गोवर्धन परिक्रमा इतना ही नहीं, हमारे सारे आचार्य करते हैं या किए हैं, इतना हद तक रघुनाथ दास गोस्वामी तो वृद्धावस्था भी करते थे गोवर्धन परिक्रमा। सनातन गोस्वामी पास चल नहीं पा रहे थे लेकिन फिर भी रोज़ परिक्रमा करते थे, ये उनका नियम था। परिक्रमा करने के समय हजारों वैष्णवों को प्रणाम करना ये स्वाभाविक तरीके से होता था। इतना हद तक कि कृष्ण का हृदय पिघल गया सनातन गोस्वामी का इस प्रकार गोवर्धन परिक्रमा की आसक्ति देखते हुए। इतना वृद्ध थे चल नहीं पा रहे थे, कृष्ण प्रकट होकर सनातन गोस्वामी को कहा कि हे सनातन अभी ये वृद्ध हो चुके हो, ये मत करो अभी। सनातन माने नहीं, तब कृष्ण स्वयं बांसुरी बजाए और इनका वेणु गीत सुन के पत्थर भी पिघल गया, और उस पत्थर के ऊपर भगवान के चरण चिन्ह है। राधा दामोदर मंदिर जाएंगे उधर एक गोवर्धन शिला है उसका दर्शन कर सकते हो। भगवान ने कहा आप इसका चार बार परिक्रमा करो काफ़ी है, गोवर्धन का परिक्रमा हो गया समझ लो। तो इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा सा चैतन्य महाप्रभु जिस प्रकार गोवर्धन का परिक्रमा किए और मानसिक परिक्रमा करेंगे, और कल चर्चा करेंगे किस प्रकार भगवान ने इस गोवर्धन को उठाया। तो गोवर्धन परिक्रमा का प्रारंभ ट्रेडिशनली करना चाहिए मानसी गंगा से। वैसे कहीं से भी कर सकते हो, कहीं से भी अंत कर सकते के समाप्त कर सकते हो, इसका कोई नियम नहीं है, क्योंकि वो दिव्य है, क्योंकि भगवान का आगे अंत कुछ होता नहीं है, हर चीज़ दिव्य है। लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने मानसी गंगा से शुरू किया, तो हम भी मानसी गंगा से शुरू करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु गोवर्धन के पास अभी नज़दीक में जा रहे थे, वो जाने से पहले परिक्रमा करने से पहले उनका बहुत इच्छा थी कि मैं हरिदेव का दर्शन करूं। तो मानसी गंगा में उन्होंने नहाया, नहा के नज़दीक में ही हरिदेव का मंदिर है। गोविंद देव, हरिदेव, बलदेव, ये जो विग्रह है स्वयं इन्होंने स्थापना किया, व्रजनाभ ने स्थापना किया। तो भगवान के पोते हैं, अनेकों विग्रहों को स्थापना किया, लेकिन प्रसिद्ध ये विग्रह है, जैसे केशव जी मथुरा के, गोविंद देव और ये हरिदेव और बलदेव जी, बलदेव जी बलदेव, जहाँ वो जगह का नाम ही बलदेव है, जहाँ बलदेव जी उधर से बैठ के पूरा व्रज को कंट्रोल करते थे, कुछ समय के लिए वो राजा बने थे उस समय। तो ये चार डेटिस को हरिदेव के दर्शन करने के लिए गए। हरिदेव के दर्शन के एकदम आनंद विमोर हुए, तो बहुत नृत्य करने लगे, और ये सब करने के बाद चैतन्य महाप्रभु तो उन्होंने सोचा कि फिर अभी मुझे भगवान जी गोपाल विग्रह का दर्शन करना है। लेकिन गोपाल का जो विग्रह है, माधवेंद्रपुरी के द्वारा स्थापित विग्रह, वो गोवर्धन के ऊपर है। आप अगर गोवर्धन परिक्रमा किए होंगे, एक मुखारविंद आता है, पूरा लौटा बाबा का दर्शन करके फिर वापस एक जगह आएंगे, उसका नाम है यतिपुरा, उसको यतिपुरा बोला जाता है। माधवेंद्रपुर द्वारा निवास किए, माधवेंद्रपुरी यति है, यति मतलब सन्यासी है, तो इसलिए उसका नाम ही पड़ा यतिपुरा, क्योंकि माधवेंद्रपुरी जब इस गोपाल विग्रह का स्थापना किए, आपको मालूम है माधवेंद्रपुरी का स्टोरी, जिस प्रकार वो गोवर्धन में भाव विभोर होकर नृत्य करने रहते, उस समय स्वयं भगवान के सपने में आए और उन्होंने कहा कि मैं इधर छुपा हुआ हूँ, मुझे उठाइए वो, ताकि स्थापना कीजिए। तो इस प्रकार गोपाल जी का स्थापना माधवेंद्रपुर ने किया। चैतन्य महाप्रभु को ये बात मालूम था कि मैं जाके गोपाल का दर्शन करूँ, लेकिन वो तो मंदिर जो है गोवर्धन के ऊपर था। तो चैतन्य महाप्रभु संकोच करते, मैं कैसे कैसे दर्शन करने की लालसा भी है, और साथ साथ में ये गोपाल का विग्रह तो गोवर्धन के ऊपर है, गोवर्धन के ऊपर तो मैं अपना पैर कैसे रख सकता हूँ, वो तो भगवान है, भगवान के ऊपर थोड़ी ना पैर रखा जाता है, ऐसा संकोच कर रहे थे। लेकिन भगवान की इतना लालसा थी कि भक्त का लालसा है, भगवान का भी लालसा है चैतन्य महाप्रभु को दर्शन करने का। तो ऐसा अचानक से हवा फैल गया उधर कि अरे मुसलमान लोग आ रहे हैं, चलो 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 अभी गोपाल जी का संरक्षण करो। कोई आए नहीं थे, लेकिन फिर भी हवा फैल गया, सब ब्राह्मण लोग गए और गोपाल जी का विग्रह को उठाए, उठा के एक जगह छुपा कर रखे गंठोली ग्राम में। ये ग्राम अभी भी है। उधर चैतन्य महाप्रभु को मालूम पड़ा कि इधर है, गोपाल जी का दर्शन किए, तो अस्तित्व में कोई था नहीं, लेकिन ये भगवान की योजना थी इस प्रकार करना। तो ये गोपाल जी का हृदय का दर्शन करके आगे निकल पड़े चैतन्य महाप्रभु। तो मानसी गंगा भी बहुत प्रसिद्ध स्थान है, गंगा के गंगा से अभिन्न है, भगवान ने प्रकाशित किया ताकि ये बताने के लिए सारे तीर्थ इधर उपस्थित है। और मानसी गंगा में हरिदेव के दर्शन करके उधर और एक बहुत सुंदर मंदिर है, चकलेश्वर महादेव, शिव जी का मंदिर है वो, जो भगवान जब गोवर्धन उठाए, ऐसा मान्यता है कि उनका जो उंगली या छोटे उंगली जो है उधर स्पर्श किए थे, उधर से उठाए। और कुछ लोगों का कहना है कि ये चकलेश्वर महादेव इसलिए ऐसे क्योंकि वो चक्रेश्वर है, क्योंकि जब गोवर्धन उठाए थे भगवान, ऊपर से एक चक्र था या सुदर्शन चक्र घूम रहा था, तो उसकी वजह से उस जगह का नाम चकलेश्वर पड़ा, और उधर शिवजी है इसलिए उसका नाम है चकलेश्वर महादेव। उधर बहुत प्रसिद्ध लीला आप सब जानते हैं, सनातन गोस्वामी पर भजन कर रहे थे, बहुत सारे मच्छर थे उधर, सनातन गोस्वामी भजन में बहुत बाधा हो रही है, चलो इधर से निकलते हैं। तो शिवजी को रहा नहीं गया, अरे सनातन गोस्वामी पर जा रहे इधर से, ऐसे कैसे। तो शिवजी ने सनातन गोस्वामी को कहा कि आप मत जाओ, इधर ही भजन करो, मुझे आपका संग बहुत अच्छा लग रहा है। सनातन गोस्वामी बहुत मच्छर है, मैं क्या करूँ। शिव जी ने कहा आप चिंता मत करो, अभी मैं ऐसा वरदान देता हूँ कि इधर कोई मच्छर नहीं रहेगा। तो आश्चर्य की बात है उधर अभी भी एक भी मच्छर नहीं है। गोवर्धन में कहीं भी जाओ थोड़ा सा बैठो तो मच्छर आता है, लेकिन उधर एक भी मच्छर नहीं है। मानसी गंगा और चकलेश्वर महादेव मंदिर और हरिदेव मंदिर, तो ये दर्शन करके और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो परिक्रमा मार्ग में बहुत सुंदर स्थान आता है, वो है दान घाटी। असत में मुखारविंद उधर भी है, वास्तविक मुखारविंद जो है मानसी गंगा है। ये जो मानसी गंगा मंदिर में जो मुखारविंद है वो वास्तविक मुखारविंद है। वैसे गोवर्धन में अभी तो बहुत सारे मुखारविंद हो गए, लेकिन वो सब केवल धन कमाने के लिए हैं। तो आचार्यगण कहते हैं कि ये वास्तविक मुखारविंद है। पूरा गोवर्धन का वर्णन एक सुंदर सा मोर पीकॉक के बराबर हुआ है, मोर के बराबर हुआ है, और मुख जो है वो ये है, कौन सा, ये मानसी गंगा है। उधर आप भगवान को भोग वगैरह लगा सकते हो। तो आगे चलते चलते जाएंगे दान घाटी आता है। ये दान घाटी बड़ा प्रसिद्ध स्थान है। गोवर्धन में भगवान अनेकों लीलाओं को करते थे, उनमें से सबसे बहुत मधुर लीला इधर करते हैं। ये जो दान घाटी है ये एक बहुत रोड है, ये गोवर्धन जैसे पार करने के लिए है। यानी मथुरा जाना हो तो नंदगांव बरसाना से मथुरा जाना हो गोवर्धन को पार करना पड़ेगा, तो गोवर्धन को पार करने के लिए एक रास्ता है। तो गोवर्धन उधर ज़मीन के अंदर से जाता है और ये रोड जो है ऊपर से जाता है। अस्तित्व में गोवर्धन को क्रॉस करने के लिए या उसको पार करने के लिए ये रास्ता के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। कुछ साल पहले ऐसा हुआ था कि कहीं और रोड बनाने के लिए गोवर्धन को वो तोड़ के करने वाले थे, लेकिन सारे ब्रजवासी ने उसको मना कर दिया। अगर ऐसा है तो ये रोड क्यों है, क्योंकि वो कृष्ण के समय से है, तो इसलिए उसको ऐसा रखा गया है। तो नंदगांव जाना है तो गोवर्धन से उधर से जाना होगा, यू टू क्रॉस। तो जितने भी राधा रानी और अन्य गोपियाँ मथुरा जाके दूध दही वगैरह बेचने के लिए जाती थी, तो भगवान ग्वाल बालों के साथ उधर खड़े होके बहुत सुंदर लीला करते थे। वो टैक्स कलेक्शन लीला है। दान घाटी मतलब दान मतलब टैक्स, टैक्स देने की लीला है। इसका वर्णन सुंदर तरीके से रघुनाथ दास गोस्वामी करते हैं। कृष्ण और गोपियों के बीच में सुंदर जो वार्तालाप है बड़ा अद्भुत तरीके से पेश किए। तो एक संक्षिप्त में उसका वर्णन करेंगे कि जैसे गोपियाँ आते थे, रोज़ का यही काम है, कृष्ण और ग्वाल बाल जो उधर पेड़ में ऊपर छिड़के बैठ जाते थे, जैसे वो लोग आते थे गोपियाँ नीचे उतर के उनको रोक देते थे, बस आप जा नहीं सकते हो टैक्स तो। और गोपियों को बहुत डर लगता था, ये कृष्ण से डर नहीं लगता था, तो डर इस बात का लगता था कि ये कृष्ण इतने नटखट है कि अगर हम टैक्स नहीं देंगे तो क्या होगा, अभी इधर ही उनको ये जो मटका को तोड़ देगा, अभी हम क्या करें। तो बहुत परेशान हो गए, तो उन्होंने सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा, वी हैव टू डू समथिंग। तो गोपी ने कहा ठीक है, हम अभी तो हमारे पास पैसे थोड़े ना कि हम जाएंगे, जाके वापस जब आएंगे तब हम आपको टैक्स देंगे, क्योंकि पैसा अपने पास नहीं है, उधर बेचने गया तो पैसा आता है। तो कृष्ण ने कहा आप लोगों का कोई भरोसा नहीं है, अभी एक गोपी को इधर रख दो, बाकी सब जाओ वापस। तो इतना गुस्सा आया अभी देखते इधर, ठीक है कैसे भी करके वो लोगों ने बहुत संवाद किया लेकिन कृष्ण माने नहीं। कैसे भी करके उन्होंने कहा ठीक है हम अगले दिन ज़रूर देंगे, ये छोड़ दें, रोज़ तो आएंगे ना, अगले दिन पकड़ लेना। तो कृष्ण गए और छोड़ दिए। अगले दिन कृष्ण वापस आए। उस दिन एक गोपियों ने क्या प्लान किया था, कृष्ण आने से पहले वो लोग आए सुबह सुबह एकदम जल्दी आके, वो लोग पेड़ के ऊपर चढ़ गए सारे गोपियाँ। अभी जैसे ग्वाल बाल और कृष्ण एकदम आए आए गोपियों को आने, तो अभी आज देखेंगे ऐसा सोचते हुए आए, लेकिन जैसे सब लोग सब ग्वाल बाल आए कृष्ण के साथ ऊपर से गोपियाँ, वैसे तो ज़्यादा गोपियाँ नहीं जाती थी मथुरा, तो आज के दिन ऐसा हुआ जितने भी गोपियाँ हैं नंदगांव में बरसाना में उन सब को एकत्रित करके आए, मतलब जितने ग्वाल बाल थे उससे डबल थे। तो जैसे सब लोग ग्वाल बाल खड़े थे एकदम हीरो जैसा, तो ऊपर से सब कूदे, कूद के कृष्ण को और अन्य ग्वाल बालों को पेड़ के साथ बांध दिए। बांध के वो पेड़ का शाखा होता है, उन शाखाओं के साथ उनका शिखा को बांध दिए। बांध के ऐसा धना धन मारने लगे, क्या तुम हमसे टैक्स देता है? तो सब लोग एकदम छोड़ो 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 कर तो अभी सब मारने के बाद इन दोनों के बहुत सुंदर संवाद है। वैसे कृष्ण की बहुत प्रेममय लीला उधर होता था, इसका स्मरण करना चाहिए दानघाटी में। ये बहुत लंबा वर्णन है, रघुनाथ दास गोस्वामी का दान केली कौमुदी करके ग्रंथ है, उसको पढ़ना चाहिए। उस लीला पे बहुत सुंदर ग्रंथ है, वो पढ़ सकते हैं, इसमें कोई इतना ये चीज़ नहीं है। वो एक ड्रामा भी है, अगर करना है तो आप ड्रामा भी कर सकते हो उससे। तो आगे चलते चलते जाएंगे, वैसे गोवर्धन आपके राइट साइड से परिक्रमा होता है, राइट साइड गोवर्धन रहता है, नीचे की ओर जा रहे हैं, यानी अभी गोवर्धन के पूछरी की ओर जा रहे हैं, यू आर गोइंग टूवर्ड्स पूछ। तो चलते चलते हम जाएंगे लेफ्ट साइड में, आपको याद है कि अभी इस्कॉन भक्ति वेदांता जो एक आश्रम है वो आएगा, जहाँ बहुत सुंदर विग्रह है कृष्ण बलराम गोवर्धन शिलाएँ हैं। उधर कृष्ण बलराम गोवर्धन शिला वो स्वतः उधर मैनिफेस्ट हुए हैं, वो अपने आप प्रकट हुए। पहले सारे जो शिलाएँ एक ही जगह थी, तो कृष्ण और गोवर्धन शिला जो है वो बड़ा सुंदर लीला, कैसे जब वो जगह खुदाई कर रहे थे, पहले तो कृष्ण शिला को पहले से पूजा हो रहा था एक छोटा सा रूप में, बाद में एक गोवर्धन शिला खुदाई करने के समय प्राप्त हुआ, उधर उनका पूजा होता है। वो हिजोलिन तमल कृष्ण गोस्वामी महाराज का वो प्रिय प्रोजेक्ट है, अपने जितने भी इस्कान के जो ग्रंथों का अनुवाद है वो सब चीज़ें है उधर होता है। तो आगे चलते पढ़ेंगे, तो जहाँ ये हमारा इस्कान का मंदिर है उधर गोवर्धन के सामने, उधर से लेके आप पूरा चलते चलते गोविंद घाट तक पहुँचेंगे, वो पूरा जो रास्ता है वहाँ इतना लंबा है, ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि 5 किलोमीटर होगा। तो 5 किलोमीटर का ये जो रास्ता है वो पूरा रास्ते में गोवर्धन को भोग लगाता, ये भोग स्थली है। यानी अभी भी आप देखेंगे गोवर्धन के तलेटी पे यानी नीचे, उधर ज़मीन जो है सीधा नहीं है, वो बड़े बड़े गड्ढे हैं, ऐसा देयर आर मेनी बिग पिट्स आर देयर। तो इससे ये कहा जाता है कि जब गोवर्धन को सब लोगों ने भोग लगाया तो 1 मिनट में सब खाली हो गया, ख़त्म हो गया। तो बाद में उनको आवाज़ सुनाई पड़ा, अन्न दो। तो जिस गांव में सब व्रजवासी आके भोग लगाए थे, बड़ा सा किचन बना के रखे थे, उस गांव का नाम ही अन्योर पड़ गया। क्यों? उधर से गोवर्धन ने अन्योर बोला, अभी कितना और चाहिए, और पकाए, पका के कौन से बर्तन में रखेंगे, अभी बर्तन तो था नहीं, इसलिए वो लोगों ने बहुत बड़े गड्ढे खोदे, वो गड्ढे खोद के उसके अंदर डाला राइस जो दाल है सब कुछ है, और कहाँ से बर्तन लाएंगे, और भी अलग अलग जगह से सब लेके पूरा भरा गया था, सब पूरा स्थान वो भोग स्थली था। और परिक्रमा मार्ग में और चलते चलते आगे बढ़ेंगे, आपको स्मरण होगा कि गोविंद कुंड आएगा जहाँ भगवान का चरणामृत है, सुरभि गाय और ऐरावत, वो उसके द्वारा भगवान का अभिषेक किए, अभिषेक का वर्णन बाद में आएगा। तो अभिषेक का ये जो जल है वो गोविंद कुंड है, उधर बहुत सुंदर गोविंद सका करके एक भक्त है भगवान के, उन्होंने अनेकों और सुंदर सुंदर लीलाएं की उधर, ये उधर गोपाल जी विग्रह के साथ, जो वल्लभ संप्रदाय में उनका बहुत सारे कहानियों का वर्णन है, किस प्रकार भगवान के साथ खेलते कूदते थे। कभी कभी ऐसा होता था तब भगवान जो है वो खेलते कूदते थे, और पुजारी आके दरवाज़ा खोल के देखे तो भगवान तो है नहीं, गायब हो गए थे। तो फिर भगवान को अंदर जाना था, कैसे जाएंगे? तो गोविंद सका को कहा, गोविंद सका ने अपने अन्य ये भगवान ने गोविंद सका को कहा तुम कुछ करो, तो गोविंद सका उधर पुजारी को टैक्सी कर थक के कहीं दूसरा जगह लेके गए, तो भगवान जाके छुप के फिर वापस ऑल्टर में खड़े हो गए। तो ऐसे ऐसे बहुत सुंदर लीला है गोविंद कुंड का। और आगे चलते जाएंगे, आपको ये गोवर्धन की पूछरी यानी पूछ, उसके पास एक सुंदर मंदिर है लोटा बाबा का, ऐसा माना जाता है उधर गोवर्धन का अटेंडेंस लेते हैं लोटा बाबा, यानी आप गए तो अटेंडेंस लगता है ना, तो लोटा बाबा अटेंडेंस लेंगे। क्या है लोटा बाबा का लीला, ऐसा है कि भगवान जब मथुरा जा रहे थे उस समय लोटा बाबा ने एक सखा ने पूछा भगवान से, आप जा रहे हो, कब आ रहे हो? मैंने कहा अभी आता हूँ ना, जाके आ रहा हूँ। तो गोविंद सका, ये जो लोटा बाबा है वो सका है कृष्ण का, तो उनको भगवान से रेजलिंग करना था। तो उन्होंने कहा कि भगवान ने कहा आओ भविष्य कंस के हत्या उनको उनको मार के मैं आऊँगा, या कहा तो मैं मथुरा जाके आता हूँ। तो तब से अभी तक कृष्ण का इंतज़ार कर रहे, कब आएगा मेरा कृष्ण, अभी तक। तो ये लोटा बाबा है, तो उनका दर्शन करके फिर आगे निकलेंगे, बहुत सारे कुंड आते हैं उसका वर्णन नहीं करेंगे। आगे आगे चलते चलते आपके लेफ्ट साइड में एक कुंड आता है जिसका नाम है सुरभि कुंड। ये सुरभि कुंड अति महत्वपूर्ण कुंड है, ये जब भी मैं जाता हूँ तो खास करके उधर नहाता ही हूँ, आचमन तो करता ही हूँ। क्यों? इसका महिमा है, जो व्यक्ति सुरभि कुंड में नहाता है उसका सारे वैष्णव अपराध धुल जाते हैं। तो गोवर्धन परिक्रमा का हाईलाइट है वो। तो भी फिर भी आगे चलिए, यानी कृष्ण जब इन सब अब ब्रजवासियों को परिक्रमा करा है, इसलिए हम भी थोड़ा सा मानसिक परिक्रमा करेंगे, ऐसा विचार करके मैं कह रहा हूँ। तो आगे चलेंगे, सीधा चलते चलते जाएंगे, एक यतिपुरा आता है जहाँ महादेवपुरी का निवास स्थान था, और उधर एक मुकारविंद है जो वल्लभ संप्रदाय वाले स्वीकार करते हैं मुकारविंद करके, अस्तित्व में वो मुकारविंद नहीं है। वो श्री सनातन गोस्वामी पाद और जीव गोस्वामी पाद ने स्पष्ट रूप में कहा ये मुकारविंद नहीं है, लेकिन बहुत भीड़ रहता है, ये हमको खाली उधर प्रणाम करके आगे निकलना है। तो आगे चलते चलते नेक्स्ट आप हम पहुँचेंगे सीधा उद्धव कुंड में। उद्धव कुंड जो है बहुत अद्भुत स्थान है। उद्धव गोपियों की ये प्रेम को देख के उनका हृदय पिघल गया, बिल्कुल भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान मुझे इधर एक घास का तिनके के रूप में मुझे इधर रखो। तो ऐसा अभी भी मान्यता ये है कि घास के तिनके के रूप में उधर उद्धव अभी भी निवास करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि ये गोपियों का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो प्रेम मुझे तभी प्राप्त होगा जब उनका कृपा प्राप्त हो, और मैं तो बड़ा विद्वान हूँ लेकिन गोपियाँ मुझे कृपा नहीं देंगी, क्योंकि उनका स्वाभाविक तरीके सोचेंगे इतना महान है इनको क्या हम दे सकते हैं, इनको ये तो गोपियाँ सरल है तो कृपा कैसे प्राप्त करें। तो उद्धव ने सोचा कि वो तो मुझे हमको देंगे नहीं, क्योंकि मेरी विद्वत्ता ही मेरा योग्यता है उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए। तो उद्धव ने सोचा एक घास का तिनका ही रझाऊंगा, क्योंकि गोपियाँ का हर दिन रूटीन था। रूटीन क्या था? वो आएंगे रोज फूल तोड़ने के लिए। अभी उद्धव कुंड के उस पार, यानी गोवर्धन का इस पार उद्धव कुंड है, उस पार जो कुसुम सरोवर है, कुसुम सरोवर मतलब उधर बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल है। तो फूल तोड़ने के लिए रोज बरसाने से आती थी राधा रानी अरण्य गोपियाँ फूल तोड़ने की। तो फूल तोड़ने के लिए जब दोपहर के टाइम में आती है तो निश्चित रूप में कभी बड़ा कृपा से मेरे सर के ऊपर उनका चरण पड़ जाए, तो उनका चरण जल प्राप्त हो जाए तो मैं धन्य हो जाऊंगा। इस भाव से उद्धव अभी उधर निवास करते हैं। तो फिर आगे चलते हैं, उद्धव कुंड करने के बाद सीधा हम पहुंचेंगे राधा कुंड श्याम कुंड में। राधा कुंड श्याम कुंड का भगवान चैतन्य महाप्रभु ने आविष्कार किया, उस समय तो केवल खेती था। तो लोगों ने पूछा, चैतन्य महाप्रभु पूछा कि राधा कुंड श्याम कुंड कहाँ है, किसी को नहीं मालूम था। तो चलते चलते आके उन्होंने देखा कि एक बड़ा सुंदर सा खेत था, उसके बीच में एक जो छोटे से ऐसा कुंड जैसे थे, इतना ये भी नहीं, कुंड भी नहीं बोल सकते हो, जैसे गड्ढे होता है ना उसके अंदर पानी ऐसा था। चैतन्य महाप्रभु उधर थोड़ा सा जल का स्पर्श करते उनके अंदर सारे भाव के लक्षण प्रकट हुए, प्रेम के लक्षण प्रकट हुए। तो समझ गए यही श्याम कुंड राधा कुंड है। इस प्रकार चैतन्य ने प्रकाशित किया। ये अरिष्टा ग्राम के नज़दीक में है। वो अरिष्टासुर का कहानी बाद में आएगा, हो सकता है तो परसों चर्चा करेंगे आखिरी में, ये अरिष्टासुर का वध वगैरह हो सकता है, तो नहीं तो कभी और। तो ये बड़ा प्रसिद्ध लीला कैसे मालूम है आपको, राधा कुंड का प्राकट्य, राधा कुंड की किस प्रकार हुआ। तो चैतन्य महा कृष्ण गोपियों के साथ लीला करने के लिए आए, और जैसे गोपियों को स्पर्श करने के लायक गोपी ने कहा कि बस छुओ मत हमको, तुम पापी हो। अब देखियो भगवान को पापी कहने का अधिकार गोपियों ने गोपियों को दिया भगवान ने कृष्ण ने। और कहा मैं पापी कैसे हो सकता हूँ, मैं भगवान हूँ। देखिए तुमने अरिष्टासुर को वध किया, अरिष्टासुर गाय का जाति का है और गाय का गाय के मारने के बराबर है, गो हत्या का पाप है, तो उसके लिए। तो कृष्ण ने कहा ऐसा थोड़ी ना, तो उन्होंने तुरंत अपना एक उन्होंने एक अपनी पैर से पूरा एक गड्ढा बनाया, उसके अंदर सारे तीर्थों को बुलाया, सारे तीर्थ जो है वो जल प्रदान किए, उधर स्नान किया। तो उन्होंने कहा कि अभी बस देखो अभी मैं शुद्ध हो गया हूँ। तो तब कृष्ण ने कहा कि आप तो मेरे साथ बहुत सारे लीलाएँ किए हैं, तो आपको ये पाप लगा है, अभी यही कुंड में आप नहाओ और आपका पाप धुल जाएगा। गोपियों ने कहा कि अरे आपका पाप तो इधर छोड़ दिया, अगर हम जाएंगे तो ये पाप भी हमको लग जाएगा, हम अलग कुंड बनाएंगे। तो राधारानी ने अपना जो कंगन गोपियों ने निकाल के कंगन कुंड खुदाई किया और सुंदर सब कुंड बनाया। और पानी कहाँ से भरेंगे, मानसिंह गंगा से भरने के लिए बहुत बहुत प्रयास करते थे, सब लोग लाइन में खड़े रह गए, पानी भर भर के डाल रहे थे कितना भरेंगे। तो कृष्ण इन लोगों के प्रयास को देख के उन्होंने कहा कि हे राधे तुम्हारा कुंड मेरे लिए बहुत प्रिय है, इतना मेहनत मन करो करके उन्होंने एक गैप बना दिया। तो श्याम कुंड जो पानी है पूरा राधा कुंड में प्रवेश कर दिया। तो राधा कुंड श्याम कुंड है, तो अस्तित्व में जाते हैं राधा कुंड में नहाने के लिए। राधा कुंड और राधा रानी में कोई अंतर नहीं है, द्रवीभूत प्रेम है, राधा प्रेम कृष्ण प्रेम है। तो राधा रानी और दोनों के बीच में ये वार्तालाप हुआ, जिसमें राधा रानी ने कहा जो व्यक्ति मेरे कुंड में नहाता है निश्चित रूप में आपका प्रेम प्राप्त होगा, आपका सेवा प्राप्त होगा। तो कृष्ण ने कहा मैं भी ये आश्वासन देता हूँ कि जो व्यक्ति श्याम कुंड में नहाता है मेरे कुंड में आके नहाता है उसको क्या प्राप्त होगा, मेरा सेवा प्राप्त होगा। तो इस प्रकार दोनों ने कहा। तो श्याम कुंड में नहाता है, सॉरी थोड़ा लीला गलत बताया, तो राधा रानी कहा जो व्यक्ति श्याम कुंड में नहाता है वो निश्चित रूप में मेरा सेवा प्राप्त होगा। और कृष्ण ने कहा हे राधे जो व्यक्ति तुम्हारे कुंड में राधा कुंड में नहाता है वो मेरा सेवा प्राप्त होगा। तो गौड़ीय वैष्णव लोग थोड़ा चतुर होते हैं, वैसे कृष्ण को बचता वो चतुर है लेकिन गौड़ीय वैष्णव थोड़ा एक स्टेप आगे है। वो क्या करते हैं, उनको तो कृष्ण से मतलब नहीं, उनको राधा रानी से मतलब है, उनको मालूम है राधा प्राप्त है, राधा रानी का कृपा प्राप्त है, कृष्ण तो देगा ही। तो इसलिए गौड़ी वैष्णव जब जाते हैं वो राधा कुंड में नहाएंगे लेकिन श्याम कुंड में नहाएंगे, क्योंकि कृष्ण क्या कहा राधा रानी ने क्या कहा कि जो व्यक्ति श्याम कुंड में नहाता है वो मेरा दास प्राप्त, मेरा सेवा प्राप्त होगा। तो गौड़ी वैष्णव को क्या चाहिए, राधा सेवा चाहिए, राधा दास चाहिए। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, वो जाके श्याम कुंड में नहाते हैं, नहीं राधा रानी देखो श्याम कुंड में नहा रहा हो ना, इसलिए अभी हमको अभी आपका सेवा। तो ऐसा राधा कुंड श्याम कुंड दर्शन करके और आगे जाएंगे, कुसुम सरोवर आता है, इसका भी दर्शन करना चाहिए। इधर भगवान राधा वन विहारी के रूप में निवास करते हैं, भगवान ने एक गार्डनर का रूप धारण किया, एक गार्डनर को क्या बोलते हैं माली का रूप धारण किया, और कृष्ण राधा रानी का स्वयं अपने श्रृंगार किया, फूलों से सजाया। ऐसे अनेकों अनेकों लीला हैं, इस प्रकार गोवर्धन का परिक्रमा करते करते आप इन लीलाओं का स्मरण कर सकते हो। जो लोगों ने गोवर्धन परिक्रमा किया नहीं है तो आप निश्चित रूप में जल्दी जाके कर सकते हो, वृंदावन तो दूर नहीं है आपके, आप जाके गोवर्धन का परिक्रमा करो, अपना जीवन सफल कीजिए। कल चर्चा करेंगे किस प्रकार कृष्ण ने एक गोवर्धन को धारण किया, उठाया, और उसके पीछे सिद्धांत वगैरह चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण।